आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के पुण्य पाप अधिकार के हम गाथा नंबर 151 पृष्ठ क्रमांक 83 पर आए हैं। देखो यहां तो बता रहे हैं ये शुभ अशुभ जो कर्म है यानी जो परिणाम है वे दोनों ही बंध के हेतु हैं, बंध के कारण हैं। उसी बात को आगे को बढ़ाते हुए कह रहे हैं तो ये फिर मोक्ष साधने के लिए कौन होगा, तो कहते हैं अथ ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति। क्या कहते हैं, हवे ज्ञान मोक्षनु कारण छे एम सिद्ध करे छे, यानी ज्ञान जो है वह ज्ञान में राग नहीं है और जो राग है उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये समझा रहे हैं कि जो ज्ञान है वो भी कैसा ज्ञान आगे चल के बताएंगे, जो अपने स्वभाव को जान रहा है वह ज्ञान, ये मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ वो ज्ञान की बात नहीं हो रही है, अपने स्वयं को जानने रूप जो ज्ञान है वह ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। और ये इस बात को वो सिद्धि कर रहे हैं। अभी हम गाथा पढ़ेंगे, पढ़ ली थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ गाथार्थ पढ़ते हैं। खलु निश्चय थे यह जे परमार्थ, परमार्थ एटले परम पदार्थ छे, समय समय छे, शुद्ध शुद्ध छे, केवली केवली छे, मुनि मुनि छे, ज्ञानी ही ज्ञानी छे, तस्मिन स्वभावे ते स्वभाव में स्थिता स्थित मुनय मुनियो निर्वाण निर्वाण ने प्राप्नुवंती, निर्वाण ने पामे छे। देखो क्या कह रहे हैं, यहां बता रहे हैं कि जो स्वभाव में स्थित है ऐसे जो मुनि हैं वे ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो स्वभाव में स्थित होने का जो कोई प्रकार है वो स्वभाव में स्थित कौन होगा, ज्ञान, तो ज्ञान की ही ये बात है। देखो ज्ञान के लिए क्या कह रहे हैं, निश्चय थी परम पदार्थ है कह रहे हैं, ज्ञान कहो आत्मा कहो दोनों बातें एक ही, लेकिन यहाँ ज्ञान की बात कह रहे हैं कि निश्चय से जो वह परमार्थ है परम पदार्थ है उसी को ज्ञान को ही समय कहा, शुद्ध कहा, केवड़ी कहा, मुनि कहा, ज्ञानी कहा, ते स्वभाव में स्थित ऐसे मुनियों को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो स्वभाव है ज्ञान में उसमें जो ज्ञान एकाकार होता है वही जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखो क्या कह रहे टीका में, ज्ञान मोक्षनु कारण छे, केम के ज्ञान शुभाशुभ कर्मोना बंधनु कारण नहीं होवाथी तेने ए रीते मोक्षनु कारणपणु बने छे। ते ज्ञान समस्त कर्म आदि अन्य जातिओथी भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ परम पदार्थ छे, आत्मा छे। क्या कहा? जो ज्ञान है वही आत्मा कहा है। और ज्ञान कैसा है? समस्त कर्म, समस्त कर्म यानी ये शुभाशुभ भाव जो है, भाव कर्म आदि कैसे हैं? वे अन्य जाति है, उनसे ज्ञान भिन्न है। ऐसे चैतन्य मात्र परम पदार्थ छे। हाँ जी, चैतन्य
जाति मात्र,
जाति मात्र। मैं क्या कह रहा था?
चैतन्य मात्र।
ओ, चैतन्य जाति मात्र। क्योंकि जो चैतन्य यानी ज्ञान जो है उसकी जाति और राग की जाति जुदी जुदी है। ते आत्मा एक ही साथ है, युगपत एक ही भावे, एकत्व पूर्वक प्रवर्तता एवाजे ज्ञान अने गमन परिणमण ते स्वरूप होवा थी समय छे। देखो यहाँ पर जो ऊपर दिए गए हैं वो सारे विशेषण फिर दोबारा इसमें रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहले बताए तीसरे लाइन में जाति मात्र परमार्थ छे, परम पदार्थ छे। फिर दूसरे में कहते हैं वो समय छे। समय किसको कहा है? के जो एक ही साथ एक भाव में जो जानता भी है और गमन भी करता है, परिणमित भी होता है, उसको यहां समय कहा है। वैसे समय करने के, समय के लिए उसका समय का अर्थ द्रव्य भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी होता है। लेकिन यहां समय किसको कहा है? जो परिणमन रूप जो कार्य हो रहा है, जानने का जो कार्य है और परिणमने का, उसको यहाँ समय कहा। सकल नए पक्षों थी। हाँ जी,
देखो ये समय शब्द की टीका तो दूसरे गाथा की टीका में ये बात आई थी, समय किसको कहना, यही सेम परिभाषा वहां भी बताई थी। देखो समय शब्द नो अर्थ आ प्रमाणे छे। सम तो उपसर्ग है, सम ए समय ऐसा शब्द बना ना, तो उसमें सम का अर्थ तो होता है उस, तेनो अर्थ छे एक पणु। सम का अर्थ होता है एक पणु। अने अय गतव धातु छे, सम और अय, तो अय गतव ये धातु है, तेनो अर्थ गमन पण अर्थ छे अने ज्ञान अर्थ पण छे। अय के दो अर्थ है, गमन करना और जानना, ज्ञान भी उसका अर्थ होता है और गमन ऐसा भी अर्थ होता है, गमन ने परिणमन के अर्थ में लेना। तेथी एक साथे जेने युगपत जानू तथा परिणमन करूं, परिणमन होना, जानना, जानना ये परिणमन भी है और जानना ये कार्य भी है। पर्याय हो रही ना हर समय, नई नई पर्याय, परिणमना परिणमना हो रहा है, तो परिणमना भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है। तो कहते हैं एक साथ है यानी युगपत जानू तथा परिणमन करूं, ए बे क्रियाओं जे एकत्व पूर्वक करे ते समय छे। समय का क्या अर्थ बताए? जानना और परिणमना ये दोनों क्रियाएं युगपत एक साथ है जो करता है, जो एक साथ करता है उसको समय कहा है। आ जीव नामनो पदार्थ एकत्व पूर्वक एकज वक्ते परिणमे पण छे अने जाणे पण छे, तेथी ते समय छे। ये समय शब्द की यहाँ परिभाषा उन्होंने स्पष्टीकरण बताया। वही बात यहाँ अभी हमने पढ़ी कि ते आत्मा एक ही साथे ने युगपद एक ही भावे ने एकत्व पूर्वक युगपद भी और एकत्व पूर्वक भी क्या करता है? प्रवर्तता एवा ज्ञान अने गमन ने परिणमन ते स्वरूप होवाती समय छे। जो हमने दूसरी गाथा की टीका में समय शब्द का अर्थ बताया था, उन्होंने आचार्य रामचंद्र वही बात यहाँ उन्होंने रिपीट कर ली। आगे पढ़ें।
हाँ, आपने जो बताई है वही बात इसी गाथा के आगे विश्लेषण जहाँ होना है पेज नंबर 87 पे भी वही बात लिखी है।
अच्छा अच्छा, ये हाँ, पढ़ी नहीं थी मैंने।
कोई बात नहीं, हाँ। अभी आपने वो विषय निकाले तो हम पढ़ लेते हैं। एक ही बात है, वहाँ जो लिखी है वही बात यहाँ पर बताई है। देखो देखो, पहले लाइन से पढ़ूंगा 87 पेज पर। हवे कहे छे ते आत्मा एकी साथे युगपत एकी भावे एटले एकत्व पूर्वक प्रवर्तता एवा जे ज्ञान ने गमन एटले परिणमन ते स्वरूप होवाती समय छे। ये तो यहाँ जो अभी आपने यहाँ पढ़ा था ना पेज नंबर 83 पर, उसी को पहले उद्घृत किया। अब कहते हैं आत्मा एक समय मा एकी भावे प्रवर्तमान छे, एकी भावे परिणमे छे, एटले शुं के एटले एकत्वपने एटले ज्ञानपने परिणमे छे, अर्थात पुण्य पापना विकल्पपने नहीं पन शुद्ध चैतन्यनी वीतराग परिणतिये परिणमे ते आत्मा नाम यानी आत्मा याने समय छे। अभी बात अब थोड़ा
ये तीसरे पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में भी
हाँ, देखो देखो ऊपर है ना, सेकंड पैराग्राफ में देखना। यहाँ ज्ञान ने समय कहे छे, समय एटले सम अधिक अय एटले सम्यक प्रकारे ज्ञान नु परिणमन करे, आनंद नु परिणमन करे अने एकी साथे एक रूपे प्रवर्तमान अनंत गुणों नु परिणमन करे ते समय नाम आत्मा छे। अब थोड़ा सा आगे बाहर पढ़ते अगले अगला पैराग्राफ। समय एटले सम अधिक अय, ज्ञान नु सम एटले एकी साथे, अय एटले जाणवू अने परिणमवू, ते स्वरूप होवाथी ज्ञान समय छे। तीसरी लाइन में आई समय एटले द्रव्य नहीं पर्याय समझवी, क्योंकि परिणमन हो रहे ना, जानने का भी और पलटने का भी, ये सारी बात आगे आने वाली है। अभी हम फिर 83 पर जाएंगे, नहीं तो बीच वाली बात रह जाएंगे अपने। तो हमने ये देखा था ना, देखो यहाँ ज्ञान को ही अभी हम दो बार पढ़ेंगे, तीसरी बार मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, याद करना है ना भाई। देखो ये गाथार्थ में आप चाहो तो नंबर लगा सकते हो, परमार्थ ये एक नंबर है, समय यह दूसरा नंबर है, शुद्ध यह तीसरा नंबर है, केवली चौथा, मुनि पांचवा, ज्ञानी छठा। तो ये ज्ञान को ही छह अलग अलग उसके ये बताए, क्या नाम है, अलग अलग नाम दिए हैं। ये ज्ञान का ही वर्णन चल रहा है, ज्ञान को भी ज्ञानी कहा, ज्ञान को भी मुनि कहा, और क्या कहा, शुद्ध कहा। देखो फिर से पढ़ता हूं, परमार्थ समय शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी, छह बातें हैं। अभी हम पहले तीसरे लाइन में चैतन्य मात्र जाति परमार्थ एटले परम पदार्थ छे, एक बात हो गई। अब एक ही साथ युगपद वगैरह वगैरह वगैरह, पांचवी लाइन में समय छे। अब यहां क्या कहते हैं, सकल नए पक्षों थी अमिलित एटले अमिश्रित एवा एक ज्ञान स्वरूप होवाती शुद्ध छे। क्या कहा, नए कितने हैं तो बहुत है, लेकिन उनसे यह ज्ञान मिला हुआ नहीं है, अमिलित है, इसलिए वो शुद्ध है। अब ये तो ये शुद्ध नामक जो विशेषण है और दो तीन और दो जगह आया है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, वहां शुद्ध का अर्थ अलग किया है, यहां शुद्ध का अर्थ अलग है। वैसे 73 गाथा में भी है शुद्ध शब्द, वहां पर भी अर्थ जुदा है, यहां शुद्ध का अर्थ क्या है कि जो नए पक्षों से अमिलित है। इसलिए देखो क्या कहते हैं पांचवी लाइन में, सकल नए पक्षों थी अमिलित एटले अमिश्रित एवा एक ज्ञान स्वरूप होवाती शुद्ध छे। उसको शुद्ध क्यों कहा, कि उस ज्ञान में कोई नए ऐसे मिले जुले नहीं है, उससे ज्ञान जुदा है, इसलिए उसको शुद्ध कहा। केवल चिन्ह मात्र वस्तु स्वरूप हुआ थी, केवड़ी छे। ये केवड़ी का अर्थ केवल ज्ञानी केवड़ी वो नहीं है, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। क्या कहते हैं, केवल चिन्ह मात्र वस्तु स्वरूप हुआ थी केवड़ी छे। अब कहते हैं फक्त मनन मात्र एटले ज्ञान मात्र भाव स्वरूप हुआ थी, यानी मुनि है, मनन करता है इसलिए उसको मुनि कहा। वो ज्ञान किसका मनन करता है, क्या ज्ञान स्वरूप ज्ञान मात्र अपना भाव स्वरूप हुआ थी उसको मुनि कहा है। पोते ज ज्ञान स्वरूप हुआ थी ज्ञानी छे। ये तो टीका में ये बात हम पढ़ रहे हैं, आगे स्वामी जी उसका खुलासा करेंगे और अपनी बात ख्याल में बराबर और अधिक से आएगी। स्वना भवन मात्र स्वरूप हुआ थी स्वभाव छे। ये सातवां पॉइंट होना चाहिए, क्या मालूम। अथवा स्वभाव भी कहा
ना, तस्मिन सीता स्वभाव।
हाँ जी, हाँ,
ऐसे स्वभाव में जो स्थित है।
अथवा स्वतः पोता थी जो चैतन्य ना भवन मात्र स्वरूप हुआ थी सद्भाव छे। स्वभाव कहो के सद्भाव कहो एक ही बात है, के जे स्वतः होए ते सत्स्वरूपज होए। आ प्रमाणे शब्दभेद होवा छता वस्तु भेद नथी। यानी क्या कहा, एक ही ज्ञान को अलग अलग शब्द से यहां वर्णन करते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, शब्द भेद हुआ छता अलग अलग शब्द है लेकिन वस्तु भेद नहीं, ले नाम जुदा जुदा छे छता वस्तु एक ज छे।
देखो अभी हम भावार्थ पढ़ते हैं। मोक्ष नु उपादान तो आत्मा छे, पर्याय जो है वो आत्मा की पर्याय, आत्मा में सी होगी तो उसका उपादान आत्मा स्वयं है। वही परमार्थ है, आत्मा नो ज्ञान स्वभाव छे, ज्ञान छे ते आत्मा छे अने आत्मा छे ते ज्ञान छे। स्वभाव है ने, स्वभाव कहो लक्षण कहो, वो तो लक्ष्य से जुदा नहीं होगा। अभी यहाँ तो उस स्वभाव की बात करें, लक्षण तो कथनचित जुदा भी हो सकता है, जिसको हम अनात्मभूत लक्षण कहते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। परंतु जो स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वो तो अग्नि से कभी जुदा नहीं होगा क्योंकि उनका नित्य तादात्म्य संबंध है। तो ज्ञान वही आत्मा है और आत्मा है वही ज्ञान, माटे ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण केहूं योग्य छे, वही उसका मोक्ष का उपादान कारण होता है। अब आगे बढ़ते हम, अब यहाँ प्रवचन करेंगे तो पहले जो हेडिंग है मथाड़ू, हवे ज्ञान मोक्ष नु कारण छे एम सिद्ध करे छे। टीका ऊपर नु प्रवचन। ज्ञान मोक्ष नु कारण छे केम के ज्ञान शुभाशुभ कर्मों ना बंधनु कारण नहीं हुआ थी, तेने ए रीते मोक्ष नु कारण पनु बने छे। वो ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है, और पुण्य पाप के भाव है, शुभाशुभ भाव है, जो राग भाव है, वे बंध के कारण है। देखो ज्ञान मोक्ष नु कारण छे एटले शू, एटले अंदर जे शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा छे, एना ज्ञान श्रद्धा आदि रूप जे निर्मल परिणति थाय ते मोक्ष नु कारण छे। अभी यहाँ परिणति को, निर्मल परिणति को मोक्ष का कारण कहा है।
अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जानना 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 ये स्वभाव है, लेकिन पर को जानने की बात यहाँ नहीं है। हमने कल भी बात कही थी जो आगम में यहाँ बात है, कि यहाँ तो उन गुणों का ही वर्णन किया है कि जो सम्यक रूप से परिणमित हो रहे। तो यहाँ पर भी ज्ञान किसको कह रहे, देखो क्या कहते हैं, एटले यह है ना ज्ञान मोक्षनो कारण छे, एटले अंदर जे शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा छे, ये तो त्रिकाली द्रव्य की बात कही। एना ज्ञान श्रद्धान आदि रूप जे निर्मल परिणति थाय, तो ये परिणति जो है वो ज्ञान रूप, जो अपने स्व को जानने रूप जो कार्य हो रहा है, श्रद्धा ज्ञान आदि रूप जे निर्मल परिणति ते मोक्षनु कारण छे।
अंदर चिदानंदमय परम पवित्र भगवान पड़ेलो छे, तेमा दृष्टि अने लीनता करवाथी पर्यायमां जे निर्विकल्प ज्ञान अने आनंदनो स्वाद आवे ते मोक्षनु कारण छे। जो समय
ऊपर जो लिखा है ना ज्ञान श्रद्धान आदि रूप, या आदि में और एक बात बढ़ा दी, आनंदनो स्वाद चारित्र भी है और अन्य गुण भी है, लेकिन यहाँ तो मुख्य रूप से चार ही गुणों की बात जनरली होती है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र और आनंद या सुख। आगे
जो समय दर्शन थया पछी पण धर्मी जीव ने भक्ति पूजा यात्रा आदि ना शुभ भाव आवे छे, पण ए सर्व शुभ भाव ज्ञानी नी दृष्टि मा हेय छे, एटले श्रद्धा मा एने हेय ज माने छे। आवे तो छे शुभ भाव, परंतु श्रद्धा मा उसे छोड़कर शुद्ध भाव प्रकट करवा जैसा है जेवो छे एम एम माने छे। ये इसको कहते जो का त्यों श्रद्धान, ये श्रद्धा की बात है। जब हम हेय की बात आती है तो छोड़ना यानी आचरण में से ही छोड़ देना इसे अर्थ करते हैं, तो कहेंगे इसको हे करेंगे तो जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे, वैसी बात नहीं है। शुभ भाव आ रहे हैं और श्रद्धा में उसको हेय तरीके से मान रहे हैं। क्या कहते कि ये सर्व शुभ भाव, सर्व लिखा हो, अकेले पाप भाव है या ऐसा नहीं कहा, तो सर्व शुभ भाव ज्ञानिनी दृष्टि मा हेय छे, दृष्टि की बात की वहां आत्माना आनंद नो स्वाद आयो छे, एवा धर्मी जीव ने उपयोग अंतर मा लीन न रही सके त्यारे अशुभति बचवा तेने शुभ आवे छे, करे छे ऐसा नहीं लिखा, आवे छे, पण ते शुभ आचरण ने आदरणीय अने मोक्षनु कारण जानतो नथी। ए तो स्वसन्मुखता नो पुरुषार्थ उग्र करीने क्रमशः शुभ ने पण टाळतो जाए छे, आवी वात छे। एने उसको भी वो हे ये मान रहे है और वो अधिक से अधिक अपने में ही लीन रहने के वहाँ उनके पुरुषार्थ भी प्रयत्न भी होते जाते हैं, वैसे वैसे शुभ भाव भी घटते जाएंगे और स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाएगा। अरे भाई, आवो मनुष्य भाव मळ्यो अने वितराग मार्गना संप्रदाय में जन्म थयो त्यारे पण आ मार्ग नहीं समझे तो भवनो अभाव केम थशे, नहीं थाय। भव परंपरा तो तेने अनादिती छे, भव परंपरा नी जन्ममरण 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 अनादि से ही चला आ रहा है। चाहे नरक हो के स्वर्ग हो, बधाए भव दुखरूप छे। अब यहाँ नरक का वर्णन सुनता है, स्वर्ग के वहाँ की अनुकूलता की बात सुनता है, तो इसको चाहिए कि अभी वो अभी कहाँ जन्म लेना है, तो स्वर्ग में जन्म लेना है। फिर वो स्वाध्याय करने से अपना कल्याण होगा, तीर्थंकरों की वाणी कल सुनने से मुझे समय दर्शन होगा मानता है, तो महाविदेह में पहुंचना चाहता है क्योंकि निमित्त से कार्य मान रहा है ना। परंतु जिस निमित्त से समय दर्शन हो सके ऐसा धर्मोपदेश उसको अभी भी मिल गया है, तो इतना सारा अवसर आ चुका है, तो अभी तो कुछ कार्य नहीं करना चाहता, तो और वो फिर वो वायदे बनाता है कि आगे के भव में वहां जन्म लूंगा और फिर वहां सुनूंगा और फिर वो करूंगा। तो कहते बधाए भव दुखरूप छे, ज्ञान ज मोक्ष नु कारण छे। तो नरक में जाने पर ज्ञान चला जाएगा ना, क्या रहेगा ना? तो ये बाह्य संयोगों की तरफ देखता है, कहाँ का भव चाहिए आगे। वो आयु बंध की बात आती, तो कब आयु बनता है तो मैं अच्छे परिणाम रखूंगा, तो बाकी काल में कैसे भी हो जाए चलेगा, आयु बंधने का अवसर आएगा तो मुझे अच्छे भाव रखना ऐसा मानता है। यानी उसकी मान्यता में अभिप्राय में किसी गति को उसने अच्छी मानी है और वहां जन्म लेना चाहता है। देखो क्या कहते, बधाए भव दुखरूप छे, ज्ञान ज मोक्षनु एटले परम सुखनु कारण छे। यहाँ मोक्ष परम सुख को कहा। अभी बात आई थी ना पुद्गल को मोक्ष होता है कि नहीं होता, तो पुद्गल को परम सुख होता है कि नहीं होता है, तो ज्ञान ज मोक्ष नु कारण छे। केम के ज्ञान शुभाशुभ कर्मो ना एटले शुभाशुभ भावना बंधनु कारण थतु नथी। जे शुभाशुभ भाव बंधना कारण छे ते ज्ञान मा नथी, यानी ज्ञान है वो पुण्य पाप भाव से रहित ऐसा भाव है, और उस पुण्य पाप से रहित ऐसे जो ज्ञान भाव से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये बात यहाँ बतानी। तेथी शुद्ध आत्माना अवलंबन थी जे पुण्य पाप रहित निर्मल शुद्ध परिणति प्रकट थाय छे ते बंधनु कारण नथी। ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी आते हैं ना, जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है, परंतु जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में वो श्रद्धा है उतने अंश में बंध, ऐसा वो सबको पर घटाया चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र पर, और सब में ऐसा लिखा कि वो जितने अंश में राग है उतने ही अंश में बंध है। राग यानी भी है शुभ शुभ राग समझना, शुभ भाव भी समझना, शुभ भाव भी के, या पुण्य पाप। अभी पुण्य पाप का अधिकार है तो हम कहेंगे जितने अंश में पुण्य है पाप है उतने अंश में वहाँ बंध है, परंतु ज्ञान में पुण्य और पाप के भाव नहीं है, शुभ शुभ भाव नहीं है, तो ज्ञान वो बंध का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए पुण्य और पाप से रहित ऐसे जो ज्ञान वो कब हो सकता है, जब शुद्धात्मा की दृष्टि करेंगे उसी में लीन रह जाएंगे और उसी को अनुभव करते रहेंगे तब कहते हैं। तो शुद्धात्मा ना अवलंबन थी जे पुण्य पाप रहित निर्मल शुद्ध परिणति प्रकट थाय छे ए बंधनु कारण नथी। जो आ अस्ति नास्ति कर्यू ज्ञान मोक्षनु कारण छे अने ते शुभाशुभ कर्मोना बंधनु कारण नथी, दोनों बताए ना, वो मोक्ष का कारण है बंध का कारण नहीं है, ये बात बताए। दूसरी तरफ ऐसा भी लेंगे कि ज्ञान है वो मोक्ष का कारण है और शुभ भाव वो मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसे भी अस्सी नास्ते ऐसा भी अनेकांत करेंगे हम, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, अरे ज्ञान तो वो मोक्ष का कारण है पर वो पुण्य भी साथ वाला पुण्य भी मोक्ष का कारण है, तो पुण्य को महाव्रतों को भी मोक्ष का कारण मानते हैं, तो यहाँ अकेला किसको लिया, ज्ञान को। देखो कि ज्ञान मोक्षनु कारण छे अने ते शुभाशुभ कर्मोना बंधनु कारण नथी, ज्ञान बंधनु कारण नथी तेथी तेने ए रीते मोक्षनु कारणपणु बने छे। आ भगवान आत्मा जानवा देखवाना एटले ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वालो छे, एना ज्ञान श्रद्धानपणे परिणमन थवुं ए आत्मानु परिणमन छे। जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा परिणमन होगा तो उसको आत्मा का परिणमन कहा। क्या कहा देखो कि भगवान आत्मा जानवा देखवाना स्वभाव वालो छे, एना ज्ञान श्रद्धानपणे परिणमन थवुं, पर्याय में वो जानने देखने वाले भगवान आत्मा का जो श्रद्धान हो जाएगा उसका जो ज्ञान हो जाएगा पर्याय में, ए आत्मानु परिणमन छे। ए परिणमन मोक्षनु कारण छे केम के बंधना कारण थी रहित छे। ये उसी को आत्मा का परिणमन कहा। ऐसे तो हम देखते हैं कि जैसे क्रोध भी आत्मा का परिणमन है, परंतु यहाँ वो बात नहीं ली। आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप से जो परिणति होती है ऐसे निर्मल परिणति को आत्मा का परिणमन कहा, और वो राग को उससे भिन्न कहा। पुण्य पाप से रहित ऐसे जो निर्मल परिणति होती है उसी को यहाँ आत्मा का परिणमन कहा और उसी को मोक्ष का कारण कहा है। लिखा केम के बंधना कारण थी रहित छे, एमा अंश पण बंधन नु कारण नथी। जो ज्ञान है कैसा ज्ञान, जो अपने स्वभाव के आश्रय से उसको जानते हुए निर्मल परिणमन कर रहा है वो बंध का कारण नहीं है, यानी अंशपन बंध का कारण नहीं, ऐसा कहा। देखो गंभीर बात छे भाई, बंध भाव मां अंशे पण मोक्ष मार्ग नहीं, अने मोक्ष मार्ग मां बंधनो अंश मात्र पण नहीं, दोनों ओर से पक्का बता दिया। क्या कहा, बंध भाव में आवशे पण मोक्ष मार्ग नहीं। बंध भाव, बंध के भाव कौन से है? बंध के कारणभूत भाव, पुण्य और पाप के परिणाम, शुभाशुभ भाव, उसमें अंश मात्र भी मोक्ष मार्ग है नहीं। आप कहेंगे 28 मूल गुण पालन करने के जो शुभ भाव है वो तो मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? हमने तो शास्त्र में उसको देखा है, ये मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा तो कहा है ना। वो उपचार किया है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। साथ में जो ज्ञान है, निर्मल परिणति है,
वह निर्मल परिणति जो है, वह निर्मल परिणति ही मुक्ति का कारण है। देखो यहाँ कह रहे हैं नीचे से थर्ड लाइन, गंभीर वाच्य भाई, क्या कहा? बंद भाव में अवशेपन मोक्ष मार्ग नहीं। अभी बंद भाव में यहाँ तो पुण्य पाप की बात चल रही है, हम तत्वों की भाषा देखेंगे तो आश्रव बंध में मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्ग में बंधन अंश मात्रपन नहीं, सवन निर्जना में, इस तरह से। ये तो द्रव्यानियोग है ना, तो यही कहेगा। शुद्ध चैतन्य स्वभावना ज्ञान श्रद्धा ने रमणता ए चैतन्य नी ज्ञान स्वभाव रूप परिणति छे ते मोक्षनु कारण छे। केम तो कहे छे के बंधनु कारण जे शुभाशुभ कर्म तेनो एमा अभाव छे। केमा ज्ञान मा, तेमा एमा एटले अने तेथी एने एटले ज्ञान ने मोक्षनु कारण पनु बने छे। आम भगवान ज्ञानानंद स्वभावना दृष्टि ज्ञान ने रमणता ए एकज मोक्षनु कारण छे। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पण छे एम आवे छे ने, एनो खुलासो कर्यो छे ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक मा, के मोक्ष मार्ग तो बे नथी पण मोक्ष मार्ग नु निरूपण बे प्रकारे छे।
निरूपण ने कथन
व्याख्यान प्ररूपण जिसको हम कह सकेंगे,
जहाँ
उसका विश्लेषण।
हाँ, जहाँ साचा मोक्ष मार्ग ने मोक्ष मार्ग निरूपण कर्यो छे, यानी जो सचमुच मोक्ष मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहना ते निश्चय मोक्ष मार्ग छे। तथा जहाँ जे मोक्ष मार्ग तो नथी पण मोक्ष मार्ग नु निमित्त छे, वह सहचारी छे, सहचारी ने उसके साथ साथ जो होता है। मोक्ष मार्ग क्या है? तो निर्मल परिणति जो है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणति, उसको तो मोक्ष मार्ग कहा। परंतु जो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है ने, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली परिणति, परंतु उसके साथ साथ जो वहाँ, उसके साथ जो पुण्य भाव है, शुभ भाव है,
राग
जो निमित्त है, तेने उपचार थी मोक्ष मार्ग कहिए। ये उपचार कथन है, औपचारिक कथन है, सचमुच नहीं है, रियलिटी नहीं है, परंतु साथ में होने पर उसको कह देते हैं ते व्यवहार मोक्ष मार्ग छे। वड़ी त्या कहीं छे के साचु निरूपण ते निश्चय अने उपचार निरूपण ते व्यवहार। जो जिसकी पर्याय है या जो स्वयं जिस रूप है उसको उस रूप कहना वो निश्चय, उस रूप है नहीं है फिर भी उपचार से कह देना कहने के लिए, तो वो हो गया व्यवहार। तो वस्तु इन रियलिटी, जो वस्तु वस्तु स्वरूप ही होगी, तो उपचार तो हम करेंगे उसमें, वस्तु में कुछ नहीं है उपचार। जैसे मोक्ष मार्ग जो है वो स्वयं मोक्ष मार्ग रूप ही है, परंतु अन्य किसी भाव को हम व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं। तो निश्चय और व्यवहार वस्तु में कभी नहीं होता। तो कहाँ होता है? कथन में होगा, ज्ञान में होगा। वस्तु तो वस्तु है, ऐसे यहाँ कहते हैं। वो निरूपण दो प्रकार से होता है। क्या कहा? साचु निरूपण ते निश्चय अने उपचार निरूपण ते व्यवहार। माटे निरूपण नी अपेक्षाएं बे प्रकारे मोक्ष मार्ग जानो। किसकी अपेक्षा? निरूपण की अपेक्षा, यानी कथन की अपेक्षा। पण एक निश्चय मोक्ष मार्ग छे तथा एक व्यवहार मोक्ष मार्ग छे, एम बे मोक्ष मार्ग जानवा मिथ्या छे। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, निरूपण दो प्रकार से है। अन्य जो मोक्ष मार्ग नहीं है परंतु उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया है, जैसे वहां के जो शुभ भाव है उसको सहचर देखकर उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया, वो कहना व्यवहार है। मोक्ष मार्ग उपचार से कहा ना, तो उसको हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। लो आ वात छे, निश्चय मोक्ष मार्ग एकज मोक्षनु कारण छे। अब वहां यहां अभी ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा है, वो ज्ञान कैसा है तो पुण्य पाप भाव से रहित है, शुभाशुभा समस्त कर्मों से रहित बताए ना उसका। हवे कहे छे ते ज्ञान समस्त कर्म आदि अन्य जातियोती भिन्न। अभी ज्ञान की जाति और कर्म आदि अन्य भावों की जाति भिन्न भिन्न है, तो कहते समस्त कर्म आदि अन्य जातियोती भिन्न। और कैसी इसकी स्वयं की कौन सी जाति है, तो कहते चैतन्य जाति मात्र परमार्थ छे। परम अर्थ यानि परम पदार्थ, उत्कृष्ट अर्थ कहो, उत्कृष्ट पदार्थ कहो या आत्मा कहो, ये ज्ञान आत्मा है। वो बीच वाला अगर हम जाति वाला वाक्य छोड़ देंगे तो कैसा पढ़ेंगे, ते ज्ञान परमार्थ छे यानि परम पदार्थ छे इतले आत्मा छे। शू कहूं के पुण्य पाप रूप जे समस्त कर्म ते अन्य जाति छे अने एनाथी भिन्न एक चैतन्य जाति मात्र परमार्थ परम पदार्थ भगवान आत्मा छे। परमठो एम पहलू पद छे ने, हमने गाथा में देखा था ना, परमठो खलु समो, ये परमार्थ का यहाँ अर्थ किया उन्होंने। निश्चय थी परमार्थ कहता परम पदार्थ परमात्म स्वरूप प्रभु आत्मा छे, ते चैतन्य जाति मात्र छे, अने एनु चैतन्य रूप परिणमन ए मोक्षनु कारण छे, अने ते परमार्थ छे। देखो यहाँ त्रिकाली को भी परमार्थ चैतन्य पदार्थ कहा, और उसका जो निर्मल परिणमन है उसको भी वैसे ही उसको भी परम पदार्थ कहा, परमार्थ उसको भी कहा है, उसको यहाँ मोक्ष का परिणाम मोक्ष का कारण कहा है। ये जो ज्ञान रूप परिणति है निर्मल परिणति है उसको भी मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण कहा। आत्मा स्वयं मोक्ष का कारण है ही है, परंतु उस आत्मा के लक्ष्य से जो निर्मल परिणति हुई है उसको भी यहाँ ज्ञान कहकर उसको भी यहाँ मोक्ष का कारण कह दिया। आ निश्चय ए एकज सत्य छे व्यवहार असत्य छे।
यहाँ जो परमार्थ का जो अपने को विश्लेषण दिया ना, जो अभी हमने 6 पॉइंट्स देखे थे इसमें से पहले पॉइंट के बाबत में बात की है।
देखो निश्चय ने रियलिटी और उपचार ने औपचारिक से हमने आरोपित कथन जिसको कहते हैं, तो निश्चय एकज सत्य छे अने व्यवहार असत्य छे। 11मी गाथा में आयु छे ने, ये व्यवहारो अभूयत्तो भूयत्थो देशिदोदु सुदृणौ। त्रिकाली वस्तु नित्यानंद चिदानंद प्रभु विकारथी रहित एक समयनी पर्यायथी रहित भगवान परमानंदनो नाथ परम पदार्थ भूतार्थ छे ते शुद्ध नय छे। देखो यहाँ नय के विषय को नय कह दिया, ये जो बताया ना ये 11वीं गाथा का जो विषय यहाँ चल रहा है त्रिकाली वस्तु, और वो त्रिकाली वस्तु कैसी वो सभी उसका वर्णन किया, तो कहते हैं वो पदार्थ भूतार्थ है वह शुद्ध नय है। ये तो शुद्ध नय से जाना हुआ पदार्थ का वर्णन किया और उसी को शुद्ध नय बता दिया। अनेते एक ना आश्रय सम्यक दर्शन थाय छे, व्यवहार एटले अभूतार्थ ना आश्रय नहीं। देखो व्यवहार एने भेद का कथन है, भेद का कथन करते उसको भी व्यवहार करेंगे, और व्यवहार एने दो चीजें भिन्न है उसको भी अभेद से बताएंगे उसको भी व्यवहार कहेंगे। यहाँ कौन सी बात है, अभी जहाँ भेदों को गौण कर दिया है ऐसे शुद्ध ने ऐसे आत्मा को जानना है, अभेद आत्मा को जानते हैं, अभेद को जानने वाले उसको हम यहाँ शुद्ध ने कहते हैं। तो कहते हैं तो अभूतार्थ कहाँ, व्यवहार का आश्रय ने अभूतार्थ कहाँ, ये सारे विकल्प मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ उसको भी व्यवहार में छोड़ दिया सबको, तो ये व्यवहार यानी अवतार्थ के आश्रय से नहीं होता है, समझाणु काय। विद्वत जन बोधक मां खूब लीधु छे के व्यवहार साधक ने निश्चय साध्य, पण ए तो व्यवहार नहीं थी कथन छे।
ये विद्वत जन बोधक नाम का कोई ऐसा मैगजीन
होगा,
पाक्षिक हो या जो कुछ होगा, तो वहां पर ऐसा लिख के आया था कि व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है।
ये ग्रंथों में भी आता है कहीं व्यवहार साधक है निश्चय साध्य है, परंतु ये कथन इटसेल्फ व्यवहार नहीं कहा है। व्यवहार को जो साधक साधन कहा है वो किस अपेक्षा से, वो व्यवहार से कहा है। जैसे हम कहेंगे ना पुण्य को परंपरा, वो शुभ भाव को, ज्ञानी के शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का कारण कहा, ये कथन भी व्यवहार का है, क्योंकि शुभ भाव कभी कारण नहीं हो सकता है। परंपरा कारण का अर्थ क्या होता है वहां, कि वो शुभ भाव का नाश करके उसका लक्ष्य छोड़ के शुद्ध भाव प्रकट होगा तो उसको परंपरा कारण कहने में आता है। तो कौन सा निश्चय कथन है कौन सा व्यवहार कथन है ये जानना हमारी जिम्मेदारी है। तो हर समय वो स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, अरे ये व्यवहार का कथन है, ये निमित्त का कथन है, ये निश्चय का कथन है, ये तो व्यवहार नहीं थी कथन छे। त्या पूर्व पर्याय ने साधक कही छे, मोक्षनु कारण कही छे, पण ए तो बधु व्यवहार नयनु कथन छे। खरेखर तो त्रिकाली शुद्ध जे द्रव्य स्वभाव ते एक ने आश्रय ज मोक्ष थाय छे, ज लगाया। खरेखर तो इनी रियलिटी क्या है, जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है उसके आश्रय से ही मोक्ष प्रकट होगा। छता पूर्ववर्ती पर्याय ने मोक्षनु कारण कहेवूं ए व्यवहार छे। जैसे वहां सहचर देखकर शुभ राग को भी कहा, वैसे पूर्व पर्याय को भी मोक्ष का कारण कहा, वो भी व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्गनी पर्याय ने मोक्षनु कारण कहेवूं ए पण व्यवहार छे। ये आगे की बात हुई, ये और सूक्ष्मता है। क्या कहा, ये पुण्य तो मोक्ष का कारण है नहीं, वो कह दिया भले उसको तो व्यवहार कहो, परंतु जो निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको, जिसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, सच्चा मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, वो तो मोक्ष का कारण है कि नहीं है। तो कहते मोक्ष मार्ग कब तक है, जब तक मोक्ष नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग है। यानी मोक्ष मार्ग ये पूर्व की पर्याय हुई और मोक्ष ये उसके पश्चात वाली पर्याय हुई, तो पूर्व पर्याय को उस पर्याय का कारण कहना ये भी उपचार हो गया। लिखा ना, क्या कहा यार, कि निश्चय मोक्ष मार्ग नी पर्याय ने मोक्षनु कारण कहूं ए पण व्यवहार छे। ऐसा क्यों नहीं कह सकते हम, आपके पास कोई ऐसा कोई दलील है, आपके पास प्रूफ है? हाँ, प्राग भाव, वर्तमान मोक्ष की जो पर्याय है उसकी पूर्व पर्याय जो मोक्ष मार्ग है उसमें उसका अभाव है ना, तो प्राग भाव है। और मोक्ष मार्ग की पर्याय की तरफ से देखेंगे तो मोक्ष मार्ग के पर्याय का नाश होकर मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुई, प्रध्वंस भाव हो जाएगा वहां पर। तो मोक्ष मोक्षनी पर्याय नु वास्तविक परमार्थ कारण तो द्रव्य स्वभाव छे। क्या कहते हैं, द्रव्य स्वभाव किसका कारण है, मोक्ष का है कि मोक्ष की पर्याय का है? हाँ दिव्य बेन, आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ दिव्य, आप मोक्षी पर्याय का। हाँ हाँ, आप क्या कहते, मोक्षी पर्याय का। दीपाली बोलो, मोक्ष और मोक्ष की नहीं नहीं मुझे ये पूछना है मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का, मेरा प्रश्न फिर मैं दोबारा करते। ये त्रिकाली स्वभाव मोक्ष का कारण है कि मोक्ष मार्ग का कारण है? देखो कि कोई भी पर्याय है उसका कारण तो वो तो स्वभाव में से उत्पन्न होगी, दोनों का कारण।
यहाँ तो स्वभाव पर्याय है ना,
स्वभाव पर्याय है,
में लीनता होगी जब से, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय चालू रहेगी, और जो अंतरंग में ही लीनता 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 रहेगी तो मोक्ष हो जाएगी। संपूर्ण आश्रय बताए ना अभी,
तो मोक्ष का परमार्थ कारण भी द्रव्य स्वभाव है, वही कारण हम वो पूर्व की शुद्ध पर्याय पर भी ले लगा सकते हैं। तो एम शामाटे कहूं, समाधान एम छे के मोक्ष थवा पहला पूर्ववर्ती पर्याय शू हती ते बतावा सारू पूर्वनी पर्याय ने उत्तर पर्याय नु कारण कहे छे, एटले मोक्ष मार्गनी पर्याय ने।
हां सारू का अर्थ के माटे माटे जो है ने, हां हमने लिख के रखा है माटे पर करेक्ट मालूम नहीं था हमें। सारू
बतावा सारू एटले बतावा माटे, पूर्वनी एटले मोक्ष मार्गनी पर्याय ने, उत्तर पर्याय एटले उसके नेक्स्ट वाली मोक्ष पर्याय नु कारण कहे छे। बाकी पूर्व पर्याय जे व्यय रूप अभाव रूप छे एनाथी मोक्ष रूप उत्तर पर्याय नो उत्पाद रूप भाव केवी रीते थाय, जो स्वयं अभाव हो गया है, जो स्वयं व्यय रूप भाव है, उससे वो उत्पाद व्यय उत्पाद वाला भाव कैसे होगा, ऐसे कहना चाहते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग का व्यय होकर मोक्ष की उत्पत्ति होगी मोक्ष पर्याय की, तो जो स्वयं जिसका नाश हुआ है वो है नहीं है, तो उससे नई पर्याय कैसे उत्पन्न होगी, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। फिर भी कौन से पर्याय पूर्वक मोक्ष हुआ है ये बताने के लिए पूर्व पर्याय को कारण कह देते हैं, ये उपचार है। क्योंकि निश्चित पूर्व पर्याय पूर्वक ही मोक्ष होगा, जैसे कोई मिथ्यात्व में से नेक्स्ट पर्याय मोक्ष हो जाएगी, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। तो मोक्ष की पूर्व पर्याय क्या है? तो मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसको पूर्व पर्याय को भी कारण कह देते हैं। देखो क्या कहते हैं, नष्टा एटले पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय नु खरेखर कारण नथी, पण पूर्व पर्याय नु ज्ञान करावा एने व्यवहारती कारण कहवामां आवे छे, कहने कह देते हैं, क्योंकि उससे हमें पूर्व पर्याय कौन सी थी ये बात ख्याल में आती है।
देखो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है ना, वो निश्चय से ये बात सही है, इसलिए कहते हैं पूर्व पर्याय नु ज्ञान करावा एने व्यवहारती कारण कहवामां आवे छे, यानी मोक्ष मार्ग की जो पर्याय है वह मोक्ष का कारण है ऐसा कहना, यह उपचार का कथन है। अब यहां क्या कहते हैं, स्वयं ही उत्तर दे रहे। देखो थर्ड लाइन से पढ़ता हूं, पूर्व पर्याय जे व्यय रूप एटले अभाव रूप छे एनाथी मोक्ष रूप उत्तर पर्याय नो उत्पाद रूप भाव केवी रीते थाय, उत्तर भी दे दिया, न जो थाय ऐसा होगा ही नहीं, क्या उत्तर देते हैं, एटले पूर्व पर्याय एटले मोक्ष मार्गनी पर्याय उत्तर पर्याय नो एटले मोक्ष पर्याय नो खरेखर कारण नथी, निश्चय से देखा जाए तो ये बात ऐसी ही है। ये अभी हमने देखा ना इसके पहले प्राग भाव, यहाँ कह रहे पण फिर शास्त्र में तो ऐसा कथन आता है ना भाई साहब, तो कहते हैं हाँ पूर्व पर्याय नो ज्ञान करावा एने व्यवहार थी कारण कहवामां आवे छे।
जैसे हम देखते हैं ना शास्त्र में निमित्त का भी कथन आता है, वो निमित्त का ज्ञान करने के लिए वो कर्मों से ऐसा हुआ, कर्म को बांधा, कर्म को छोड़ा, ऐसी जो बातें आती है वो कैसा वहाँ निमित्त मौजूद था उसको बताने के लिए। जैसे समय दर्शन हुआ तो कहेंगे वहाँ दर्शन मोह का उपशम हुआ, तो क्या दर्शन मोह ने समय दर्शन कराया है क्या? फिर भी उस समय जब समय दर्शन की पर्याय हुई उस समय कर्मों में क्या अवस्था थी, निमित्त रूप से वहाँ कर्म कैसे अवस्था रूप से हुआ था, तो उसको बताने के लिए उसका ज्ञान कराने के लिए वो निमित्त से कथन कर देते हैं। परंतु कार्य तो उपादान से ही होता है, फिर भी वहाँ निमित्त कौन सा है, पूर्व पर्याय कौन सी थी, इन सब बातों का वहाँ ज्ञान किया जाएगा। जैसे समय दर्शन हुआ तो उसके पूर्व पर्याय कौन सी थी, तो वो कहेंगे वो करण लब्धि वाले अंतिम समय वाली अनिवृत्तिकरण वाली पर्याय थी, उससे हमें क्या पता चलता है कि पूर्व में वो क्या पर्याय थी और अभी वो कैसे उत्पन्न हुई, यही बात यहाँ बता देते हैं। हो जैन दर्शन या कोई अद्भुत स्यादवाद शैली छे। स्यादवाद, वाद एने कथन और स्याद एने देखो, स्यात एटले कोई अपेक्षा है, એટલે વાદ એક કહેતા કથન, એમ કોઈને કોઈ અપેક્ષાએ કથન કરનારી આ સ્યાદવાદ શૈલી પરમ આશ્ચર્યકારી અને સમાધાનકારી છે। વસ્તુ કા સ્વરૂપ બતાને વાલી એ સ્યાદવાદ શૈલી હૈ, ક્યોંકિ વસ્તુ તો અનેક ગુણાત્મક અનેક ધર્માત્મક હૈ, તો ઉસકા અભી અપના વિષય ચલ રહે ને 47 નય કા, तो उसमें तो कैसे अलग अलग नयों की अपेक्षा से अलग अलग धर्मों का वर्णन आता है, और पूरी वस्तु अखंड अभेद इसी ख्याल में लेने का प्रयोजन उसमें बताया जाता है। वैसे यहाँ कहते हैं ये कोई अद्भुत शैली है तो आश्चर्यकारी, फिर भी समाधानकारी ने पूरी वस्तु का स्वरूप अपने ख्याल में आ जावे, क्योंकि ये जो आचार्य है वो नयों द्वारा कथन करके हमें वस्तु को समझाते हैं। भाई जे नयथी कथन होए એને યથાર્થ સમજવું જોઈએ, એ નયોં કા કથન હમે સમજાને કે લીએ હૈ ઓર ઉસમે હમે યથાર્થ રીતે ઉસકો ગ્રહણ કરના ચાહીએ। શાસ્ત્રના અર્થ કરવા માટે પાંચ બોલ આવે છે ને,
એ સમજને જેસે પાંચ બોલ હૈ, ધ્યાન મે રખને જેસે ઓર યાદ કર લેના।
દેખો એક હૈ શબ્દાર્થ,
પહેલા હૈ શબ્દાર્થ,
ફિર નયાર્થ, आगमार्थ, पहले पांच नाम तो देखते हैं, मतार्थ और भावार्थ। दीपाली याद है कौन कौन से पांच बोल? नहीं भी याद, किसको याद है? हाँ बोलिए। शब्दार्थ, हाँ हाँ हाँ, भावार्थ, भावार्थ। हाँ देखो फिर से,
अभी इसका अर्थ क्या है वो समझाएंगे।
शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ। देखो शब्दनो अर्थ करवो ते शब्दार्थ, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं तो गाथा अर्थ लिखा होता है नीचे, है ना, और जब कलश पढ़ते तो नीचे श्लोकार्थ लिखा रहता है, यानी उसके शब्द के द्वारा शब्दों का अर्थ हम जानते हैं, उसके द्वारा उस गाथा का अर्थ करते हैं, तो उसको कहेंगे शब्दार्थ। जैसे जैनियों के इतने सारे श्लोक हैं, तो कोई संस्कृत का पंडित है तो वो शब्द के अनुसार उसका अर्थ लगाएगा, वर्ड टू वर्ड। परंतु शब्दार्थ मात्र जानने से उसका सही अर्थ उसमें से ढूंढ पाएगा ये बात नहीं है।
वक्तामर बताए ना अभी किसी ने?
हाँ, अभी बात बताई ना, भक्तामर किसको कहते हैं?
हाँ।
उसको तो भक्तांबर कर दिया लोगों ने, भक्तामर
भी नहीं, भक्तामर नहीं कहते हुए भक्तांबर कहते, वो तो बात अलग है,
अंबर बना दिया उसको।
अंबर इटले
वस्त्र,
वस्त्र भक्तांबर,
भक्तामर भक्त अमर है नाम।
तो वो
तो भक्त भगवान की भक्ति करने से अमर हो जाते, ऐसी बात है क्या? भक्ति मार्ग, अभी वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने सीखा था वो यूनिवर्सिटी में जहाँ जैनोलॉजी चलती है, उन्होंने क्या बताया, ये भगवान की भक्ति करने से वो भक्त अमर हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है, तो ये भक्ति से भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा अर्थ नहीं है वहाँ। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणम, ये जो भक्त अमर यानी देव, देवों को अमर कहते हैं। क्यों अमर कहते हैं लक्ष्मी बहन, कुछ ख्याल है? वो भी मरते हैं ना हमारे जैसे, उनको अमर क्यों कहते हैं? हाँ बोलो। हाँ बहुत लंबी आयु है, सागरों की आयु होती है, तो इसलिए पल्लों की और सागरों की है ना, इसलिए अमर यानी जैसे मरण है ही नहीं इस तरह से, और मानवों को मर्त्य कहते हैं, ये तो जल्दी जल्दी मरते हैं ना, तो ये भक्तामर अभी जो देव है इंद्र है वो समोसरण में भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वो मुकुट जो है उनके सिर से नमस्कार करते हैं, सिर नवाकर, तो क्या होता है वो मुकुट में जो मणि है रत्न है उनकी किरणें वो भगवान के नखों के ऊपर उसके पड़ते रिफ्लेक्शन होकर वो फिर तो भक्ता मरम मणि मुकुट मौली मणि प्रभाणाम, तो वो फिर वो कैसे चमकते हैं उसका वर्णन है वहां पर। तो ये भक्त को ही अमर कर दिया उन्होंने।
यहाँ तो शुभ भाव की अधिकता है, इसलिए जो भक्त है वो भक्तामर स्तोत्र बोले तो अमर हो जाए, ऐसा उसका उल्टा अर्थ। ये शब्दार्थ में ये गड़बड़ी होती है। बात ऐसी है, समय सार जैसा जो शास्त्र है वह कोई संस्कृत का प्रोफेसर होगा तो वो शब्द का अर्थ बता पाएगा कभी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, लेकिन उसका भावार्थ उसको नहीं आएगा, उसको मतार्थ नहीं आएगा, नयार्थ भी नहीं आएगा। तो हाँ, तो ये जो अभी पांच हम ये देख रहे हैं ना, शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ, तो ये जानना क्यों गरज है? अभी उसके अर्थ देखने से हमको पता लगेगा। हाँ हाँ बोलो।
देखो ये नयार्थ, नयार्थ यानी नया अर्थ नहीं, नए अर्थ इन्हें नए के द्वारा उसका अर्थ करना। हमने देखते कि जो अलग अलग नयों की जो अलग अलग कथन होता है, तो ये व्यवहार नय का कथन है कि निश्चय नय का कथन है, तो नय के द्वारा उसका क्या अर्थ हो सकता है इसको जानना, उसको कहेंगे नय अर्थ। जैसे अभी अभी हमने देखा था, इसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया, परंतु वो व्यवहार नय का कथन है। पुण्य को भी मोक्ष मार्ग कहा, ये अभी जो 28 मूल गुण पालन करने का भाव, उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया। तो देखो ये पुस्तक में लिखा है कि नहीं, तो उस पर उंगली रखकर बताते, देखो यहाँ पढ़ो पढ़ो क्या है लिखा है, तो क्या लिखा है वहां। परंतु वो व्यवहार नय का कथन है, तो उसको नय के द्वारा, जिस नय से बात की है उसी नय से उसको जानना जरूरी है। अब जो ये जो चरणानुयोग के ग्रंथ है वहां, वो क्या सदाचार संबंधी कथन होगा, तो उसमें लिखा होगा ना कि अपनी पराई वस्तु को जानकर पराई वस्तु को नहीं छूना, तो कहेंगे वो अपना पराया क्या होता है। तो ये तो जैसे द्रव्यानुयोग में कथन करते, कोई एक वस्तु दूसरे की होती नहीं है, तो मेरा पराया कुछ है ही नहीं है। तो वहां जिस नए से कथन चल रहा है उस नए से उसको जानना चाहिए। वहां भी कहेंगे ये मेरा धन है, हम पराया धन को नहीं लूटेंगे, तो ये मेरा धन है ही नहीं, तो पराया भी अपना और अपना भी अपना। तो ये चरणानुयोग नहीं, उसका कथन भी नहीं हो सकेगा। तो वहां जो कुछ असद्भूत नए से जो कुछ बातें हैं उसको उसी नए से ग्रहण करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमें शास्त्र का सही अर्थ जानना है तो अब आगमार्थ देखो यहाँ क्या कहता है, शब्द नो अर्थ करो तो शब्दार्थ, आ व्यवहार नहीं नू कथन छे के निश्चय नहीं नू ये नक्की करी समझू ते नयार्थ, आ आगम नू वाक्य छे एम जानू ते आगमार्थ। देखो यहाँ आगम, ये तो आगम तो चार अनुयोग में होते हैं, तो जिस अनुयोग का जो वाक्य होगा उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको वैसा जानना पड़ेगा, उसको आगमार्थ कहेंगे। क्योंकि द्रव्यानुयोग में तो बताएंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, और फिर वो कर्णानुयोग में कहेंगे तो जो जीव ने इतने इतने कर्म बांधे, एक समय में अनंत कर्म परमाणु बांधते, समय सार में तो कहेंगे जीव कभी कर्म ने छूता ही नहीं है, बंधा ही नहीं है, वो मुक्त होने का सवाल ही कहाँ है। तो वहाँ वो नए का भी होता है, क्योंकि एक ही वाक्य में अलग अलग ये सारे अर्थ निकालने पड़ेंगे, उसका शब्दार्थ भी होगा, उसका नया अर्थ, भावार्थ, आगमार्थ, सब उसमें एक में ही निकालने हैं ना, तो उसके जिस आगम का वो वाक्य है वैसे वहां से उसका अर्थ भी हमें समझना चाहिए। बाकी बात हम कल करेंगे।
जावानी के ज्ञान से दूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन।